नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, प्रैक्टिकल फ्रॉड प्रिवेंशन। गिलिट सपोटा की व्यावहारिक गैर कथा पुस्तक है, जो फिनटेक और ई कॉमर्स में धोखाधड़ी तथा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एनालिटिक्स को समझाती है। यह पुस्तक अप्रैल 2022 में ओरायली द्वारा प्रकाशित हुई थी और इसका केंद्र केवल संदिग्ध लेन देन पकड़ना नहीं, बल्कि किसी डिजिटल उत्पाद में धोखाधड़ी रोकने की क्षमता को शुरू से जोड़ना है। लेखक ऑनलाइन भुगतान, ग्राहक खाते, पहचान संकेतों और लेन देन व्यवहार से पैदा होने वाले जोखिमों को डेटा की दृष्टि से देखती है। SQL और पाइथन को इस काम के उपयोगी औजारों के रूप में रखा गया है, ताकि विश्लेषक डेटा निकाल सके, पैटर्न खोज सके, नियमों की जांच कर सके और जांच योग्य अलर्ट तैयार कर सके। पुस्तक का उद्देश्य किसी एक तैयार मॉडल का वादा करना नहीं है, इसके बजाय यह बताती है कि जोखिम संकेत, परिचालन प्रक्रिया, मानवीय निर्णय और ग्राहक अनुभव के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसलिए इसका दायरा तकनीकी अभ्यास के साथ फ्रॉड प्रोडक्ट संचालन और अनुपालन की वास्तविक जरूरतों तक जाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, फ्रॉड प्रिवेंशन को अलग विभाग नहीं, उत्पाद क्षमता मानना। पुस्तक का एक केंद्रीय विचार यह है कि धोखाधड़ी रोकना केवल फ्रॉड टीम के पास भेजे गए मामलों की जांच नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग या ई कॉमर्स उत्पाद में साइन अप, लॉग इन, भुगतान, रिफंड और ग्राहक सहायता जैसे हर चरण पर जोखिम बनता और बदलता है, इसलिए नियंत्रणों को उत्पाद यात्रा के भीतर रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बहुत कठोर सत्यापन वास्तविक ग्राहक को बीच में छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, जबकि बहुत ढीला प्रवाह ठग के लिए प्रवेश आसान कर देता है। उपयोगी डिजाइन का प्रश्न केवल कितना फ्रॉड पकड़ा गया नहीं है, बल्कि कितने सही ग्राहकों को अनावश्यक रुकावट, अस्वीकृति या अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ा है। यह दृष्टि प्रोडक्ट, डेटा, इंजीनियरिंग, संचालन और अनुपालन टीमों के साझा उत्तरदायित्व की मांग करती है। पुस्तक इसी कारण निर्णयों को व्यावसायिक परिणामों और ग्राहक अनुभव से जोड़कर देखने पर बल देती है। फ्रॉड नियंत्रण तब अधिक टिकाऊ बनते हैं जब वे बाद में जोड़ा गया अवरोध न हो, बल्कि उत्पाद के मापदंडों, प्रयोगों और रिलीज प्रक्रिया का हिस्सा हो। यह रुख उन संस्थाओं के लिए विशेष प्रासंगिक है जिनकी वृद्धि तेज है और जहां हर घर्षण बिंदु रूपांतरण तथा भरोसे दोनों को प्रभावित करता है। दूसरा, SQL से जोखिम डेटा को जांच योग्य संकेतों में बदलना। धोखाधड़ी विश्लेषण में डेटा उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, उसे इस तरह जोड़ना और पूछना जरूरी है कि असामान्य व्यवहार स्पष्ट हो सके। पुस्तक SQL को इसी बुनियादी कार्य के लिए रखती है। लेन देन, खाते, उपकरण, भुगतान माध्यम और समय जैसे रिकॉर्ड अलग अलग तालिकाओं में हो सकते हैं। SQL के माध्यम से विश्लेषक इन्हें जोड़कर देख सकता है कि कौन से खाते एक ही संकेत साझा कर रहे हैं, किन गतिविधियों की गति सामान्य से अलग है या किस चरण पर अस्वीकृति बढ़ रही है। इसका उद्देश्य हर विचलन को अपराध घोषित करना नहीं है। असामान्यता जांच की प्राथमिकता बनाती है, जबकि निर्णय के लिए संदर्भ चाहिए। समय आधारित तुलना, ग्राहक के अपने पिछले व्यवहार से तुलना और समूह स्तर के पैटर्न, सभी गलत सकारात्मक परिणाम घटाने में मदद कर सकते हैं। पुस्तक के व्यावहारिक रुख का अर्थ है कि क्वेरी केवल रिपोर्टिंग के लिए नहीं, नियंत्रणों की गुणवत्ता जांचने के लिए भी उपयोगी है। किसी नियम के लागू होने के बाद स्वीकृति, हानि, समीक्षा मात्रा और ग्राहक प्रभाव में क्या बदलाव आया, इसका उत्तर भी डेटा से मिलना चाहिए। इस तरह SQL फ्रॉड एनालिस्ट के लिए जांच, निगरानी और नियंत्रण सुधार के बीच का सीधा माध्यम बनता है। तीसरा, पाइथन का उपयोग। दोहराए जाने वाले विश्लेषण और मापन के लिए, जहां SQL बड़े डेटा भंडार से आवश्यक रिकॉर्ड निकालने में उपयोगी है, वही पाइथन विश्लेषण को दोहराने योग्य, मापने योग्य और व्यवस्थित बनाने में सहायक है। पुस्तक के घोषित दायरे में पाइथन का महत्व इस कारण है कि फ्रॉड टीम को एक बार की जांच से आगे बढ़कर नियमित निगरानी करनी होती है। डेटा की सफाई, श्रेणियों की तुलना, वितरण देखना, परिणामों का सार बनाना और नियमों के प्रभाव का परीक्षण, ऐसे कार्य है जिन्हें कोड के माध्यम से अधिक संगत ढंग से किया जा सकता है। फिर भी पुस्तक की व्यावहारिक दिशा यह संकेत देती है कि तकनीक को समस्या के अनुरूप रखना चाहिए। जटिल मॉडल तभी उपयोगी है जब इनपुट विश्वसनीय हो, परिणाम समझे जा सके और संचालन टीम उस पर कार्रवाई कर सके। पाइथन का लाभ केवल भविष्यवाणी बनाना नहीं, बल्कि विश्लेषण की प्रक्रिया को दस्तावेजित और पुनः चलाने योग्य बनाना भी है। इससे अलग अलग समयावधि, ग्राहक समूह या जोखिम रणनीति की तुलना अधिक अनुशासित हो सकती है। किसी अलर्ट या नियम में बदलाव के बाद उसके परिणाम मापना आवश्यक है, वरना टीम अनुमान के आधार पर काम करेगी। पुस्तक इसलिए डेटा कौशल को वास्तविक निर्णय प्रक्रिया से जोड़ती है, न कि केवल तकनीकी प्रदर्शन से। चौथा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में लेन देन के पीछे के व्यवहार को समझना। पुस्तक का दायरा भुगतान धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एनालिटिक्स को भी शामिल करता है। दोनों क्षेत्रों में डेटा पहचान और लेन देन का उपयोग होता है, लेकिन उनका उद्देश्य एक जैसा नहीं है। भुगतान फ्रॉड में तात्कालिक हानि रोकना प्रमुख हो सकता है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग जोखिम में धन के प्रवाह, संबंधों और संदिग्ध गतिविधि के व्यापक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण होता है। इस अंतर के कारण केवल एक लेन देन का मूल्य या एक सीमा पार होना पर्याप्त संकेत नहीं माना जा सकता। विश्लेषक को गतिविधि की आवृत्ति, पैटर्न में बदलाव, खातों के बीच संबंध और ग्राहक प्रोफाइल के साथ संगति को देखना पड़ता है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि अलर्ट प्रणाली को इतना व्यापक नहीं होना चाहिए कि जांचकर्ता असंगत मामलों में डूब जाए, और इतना संकीर्ण भी नहीं कि सार्थक संकेत छूट जाए। डेटा एनालिटिक्स इस संतुलन में मदद करता है, क्योंकि इससे मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है और जांच के लिए कारण स्पष्ट किए जा सकते हैं। अनुपालन कार्य में रिकॉर्ड, तर्क और समीक्षा की गुणवत्ता भी मायने रखती है। इसलिए AML को केवल नियम पालन नहीं, बल्कि लगातार विकसित होने वाली जोखिम समझ के रूप में देखना इस पुस्तक की उपयोगी विशेषता है। अंत में नियम, मानवीय समीक्षा और बदलते हमलावर तरीकों का संतुलन। डिजिटल फ्रॉड की एक स्थायी चुनौती यह है कि ठग नियंत्रणों के अनुसार अपना तरीका बदलते हैं, इसीलिए कोई स्थिर नियम संग्रह लंबे समय तक पर्याप्त नहीं रहता। पुस्तक के व्यावहारिक फ्रेम में संकेतों की निगरानी, नियमों की समीक्षा और जांच से मिली सीख को वापस प्रणाली में लाना महत्वपूर्ण है। नियम स्पष्ट, जल्दी लागू होने वाले और व्याख्या योग्य हो सकते हैं, विशेषकर नए जोखिम पैटर्न के शुरुआती उत्तर में। लेकिन नियमों की संख्या बढ़ने पर परस्पर टकराव, अनावश्यक अस्वीकृतियां और रखरखाव की समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी ओर, स्वचालित स्कोर या मॉडल अधिक सूक्ष्म संबंध पकड़ सकते हैं, पर उनकी निर्णयों को संचालन और अनुपालन के संदर्भ में समझना जरूरी रहता है। मानवीय समीक्षा इस अंतर को भरती है, क्योंकि जांचकर्ता ऐसे संदर्भ देख सकते हैं जो केवल डेटा बिंदु में नहीं दिखते। फिर भी मैनुअल समीक्षा सीमित और महंगी है, इसलिए अच्छे संचालन में उच्च प्राथमिकता वाले मामलों को सही व्यक्ति तक पहुंचाना, फैसलों के परिणाम दर्ज करना और उन्हीं परिणामों से नियंत्रण सुधारना शामिल है। पुस्तक का मूल्य इसी संयुक्त दृष्टि में है। वह फ्रॉड प्रिवेंशन को केवल एल्गोरिदम, केवल नियम या केवल जांचकर्ता की कला नहीं मानती, बल्कि मापन और प्रतिपुष्टि से चलने वाली प्रणाली मानती है। निष्कर्ष में, प्रैक्टिकल फ्रॉड प्रिवेंशन उन फ्रॉड एनालिस्टों, जोखिम प्रबंधकों, डेटा विश्लेषकों, प्रोडक्ट प्रबंधकों और फिनटेक या ई कॉमर्स संचालन नेताओं के लिए उपयुक्त है, जिन्हें ऑनलाइन जोखिम को तकनीकी और व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से समझना है। SQL और Python का कुछ आधार रखने वाले पाठक इसके तरीकों को अपने डेटा कार्य में अधिक सीधे जोड़ पाएंगे। लेकिन पुस्तक का उपयोग केवल प्रोग्रामर तक सीमित नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो जानना चाहते हैं कि किसी फ्रॉड नियम, अलर्ट या जांच प्रक्रिया के पीछे कौन से व्यापारिक समझौते होते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक डेटा से संकेत निकालने, उन्हें संदर्भ में परखने और नियंत्रणों के परिणाम मापने की सोच विकसित कर सकता है। साथ ही AML के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि जोखिम प्रबंधन में तात्कालिक नुकसान, ग्राहक अनुभव, जांच क्षमता और अनुपालन अपेक्षाओं को एक साथ देखना पड़ता है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें मशीन लर्निंग सिद्धांत, साइबर सुरक्षा या नियामकीय अनुपालन में से किसी एक पर केंद्रित रहती है। यह पुस्तक अलग दिखती है, क्योंकि यह फ्रॉड को वास्तविक डिजिटल उत्पाद और दैनिक संचालन की समस्या के रूप में रखती है। इसका जोर अत्यधिक जटिलता पर नहीं, बल्कि ऐसे विश्लेषणात्मक निर्णयों पर है जिन्हें टीम समझ सके, लागू कर सके और परिणामों के आधार पर सुधार सके। इसलिए यह विशेषज्ञों के लिए संदर्भ और नए पेशेवरों के लिए व्यावहारिक आधार दोनों का काम कर सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गिलित सपोर्टा, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।